पृष्ठ संख्या 203, सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों के मध्य संबंध, एक समीक्षा, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड वॉलेंटियरी ऑर्गेनाइजेशन आ क्रिटिक्यू। सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों के मध्य वर्तमान संबंध एवं इस बारे में सरकार की नीति की पहचान है कि ताकि समाज कल्याण एवं विकास के क्षेत्र में परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में उनकी भूमिका स्वयंसेवी संगठनों पर सरकारी नियंत्रण की सीमा एवं इसके रूप जो सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदानों के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने एवं लोक हित की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर निरीक्षण करने हेतु आवश्यक हैं। परिवर्तित परिस्थितियों एवं पिछले वर्षों में प्राप्त अनुभवों के संदर्भ में उन दोनों के मध्य वांछित समंजन जो नागरिकों के कल्याण में सहभागी होने के रूप में सकारात्मक एवं निर्णात्मक सहयोग हेतु आवश्यक हैं को ठीक प्रकार से समझा जा सके आवश्यक है। स्वतंत्रोत्तर काल में सामुदायिक विकास प्रोग्राम के आरंभ के समय स्वयंसेवी संगठनों की संख्या में अपार वृद्धि हुई है। योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी समाज कल्याण के क्षेत्र में उनकी भूमिका को इस कथन के साथ मान्यता दी कि निजी एवं सार्वजनिक सेक्टर को आलिंगन करती हुई राष्ट्रीय योजना अपूर्ण होगी यदि निर्माणकारी कार्य में बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संगठनों एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की उत्साही समर्थन को राष्ट्रीय विकास हेतु प्रयोग नहीं दिया जाता। तृतीय योजना ने स्वैच्छिक कार्य को जन सहयोग का एक स्वरूप बतलाया। चतुर्थ योजना में पिछड़े वर्गों के मध्य कल्याण सेवाओं का विस्तार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में विभिन्न प्रोग्रामों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया। पांचवी योजना में सहायता अनुदान की राशि प्रथम योजना के दौरान 4 करोड़ से बढ़कर 8.3 करोड़ कर दी गई। सातवीं योजना में स्वयंसेवी अभिकरणों को निर्धनों की सहायता हेतु विकल्पीय संयंत्र माना गया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वित में स्वयं अभिकरणों की भूमिका को विस्तारित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा मुख्यमंत्रियों को सुझाव दिया कि वे मुख्यमंत्री अथवा विकास समूहों की समय समय पर बैठकें प्रस्तावित की जाएं ताकि स्कीमों के वास्तविक क्रियान्वयन पर मूल्यांकन प्रतिसंभरण प्राप्त हो सके एवं स्वयंसेवी अभिकरणों के कार्य में बाधक समस्याओं का पता लग सके। भारत में प्रजातंत्रीय विचारधारा एवं विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया विकास एवं समाज कल्याण क्षेत्रों में स्वैच्छिक कार्य को क्रियाशील भूमिका के अवसर प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष ने तदनुसार निर्णय लिया था कि समाज कल्याण सेवाएं अधिकांशतः स्वयंसेवी सेक्टर द्वारा प्रदान की जानी चाहिए एवं राज्य का दायित्व केवल उन्हें वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने तक सीमित होना चाहिए। भारत सरकार ने 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना करके एक महत्वपूर्ण पग उठाया। इसमें मुख्यतः स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता एवं कुछ पदेन अधिकारी सदस्य होते थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वयंसेवी संगठनों की सहायतार्थ 4 करोड़ का प्रावधान किया गया। भारत में स्वैच्छिक कार्य के इतिहास में यह एक प्रशंसनीय पग था। अनुसरणीय वर्ष में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से जन सहयोग प्राप्त करने, वर्तमान स्वयंसेवी संगठनों को सशक्त बनाने तथा अप्रतिनिधित्व क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों को आरंभ करने के लिए राज्य समाज कल्याण परामर्शीय बोर्डों की स्थापना की। स्वयंसेवी अभिकरणों को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त सरकार उन्हें अन्य कई प्रकार से समर्थन दे रही है एवं सशक्त बना रही है। उनके प्रोग्रामों को विकसित एवं बेहतर बनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देकर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT आदि में उनके कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं में अनुसंधान करके उन्हें उनके द्वारा संगठित समाज कल्याण सेवाओं एवं संस्थाओं को नियमित करके सेवाओं के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करके कल्याणकारी वर्ग एवं लोगों के शोषण को रोककर वैतनिक एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करके कार्य रणनीतियों का विकास करने के लिए अनुभवों एवं विचारों के आदान प्रदान हेतु मंच प्रदान कर सके। पृष्ठ संख्या 204। महिला एवं बाल विकास विभाग, कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से सरकार स्वयंसेवी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए उनके प्रतिनिधियों को विभिन्न समितियों, कार्य समूहों एवं अध्ययन दलों में स्थान देकर उनकी सेवाओं का कल्याणकारी राज्य के आदर्श को साकार बनाने हेतु लाभ उठाती है एवं उन्हें विदेशों में आयोजित सम्मेलनों, गोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिए भेजती है। वास्तविक रूप से सरकार यह अनुभव करती है कि विकास एवं समाज कल्याण के प्रत्येक क्षेत्र में स्वयंसेवी अभिकरणों की सहभागिता अनिवार्य है। कुछ समय पूर्व इसने बच्चों के अंतरादेश अंगीकरण के मामले की प्रायोजित छानबीन करने हेतु लगभग 100 भारतीय एवं लगभग 30 विदेशी सामाजिक बाल कल्याण अभिकरणों को मान्यता प्रदान की है। अभी हाल ही में कल्याण मंत्रालय ने स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने की दृष्टि से ऐसे स्वयंसेवी संगठनों की संगठनात्मक सहायता देने की स्कीम आरंभ की है जो प्रमुख रूप से कल्याण गतिविधियों में संलग्न है एवं जिनका क्रिया क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसे समन्वय हेतु केंद्रीय कल्याण स्थापित करना आवश्यक है। ऐसी सहायता अधिकतम 15 वर्षों तक दी जाती है। सहायता की राशि मात्रा गुण के आधार पर निर्धारित की जाती है। केंद्रीय कार्यालय को चलाने हेतु व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक कार्मिकों के वेतन, भत्तों एवं अन्य आकस्मिक व्यय को इस राशि का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाता है। प्रबंधक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त नहीं होती, भी इस स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान के पात्र हैं। उपर्युक्त वर्णित उपाय सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका की प्रशंसा एवं मान्यता का प्रमाण है, परंतु इसे उनके ऊपर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण को भी करना होता है ताकि स्वयंसेवी संगठनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता को उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए जिसके लिए यह दी गई है, इसका कोई दुरुपयोग अथवा गबन न हो। उनके द्वारा उन नियमों, विनियमों, अनुदेशों, दिशा निर्देशों का पालन किया जाए जो पदाधिकारियों के नियमित निर्वाचन, योग्य स्टाफ की नियुक्ति, सेवाओं के स्तर को बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं। यह सहायता अनुदान के प्रयोग कर लिए जाने का प्रमाण पत्र स्वीकृत लेखा परीक्षकों से लेखा उपरांत परीक्षण के उपरांत प्रस्तुत करें। सरकार ऐसे संगठनों के विरुद्ध जांच आयोग कानून के अधीन जांच भी आरंभ करती है, जिनके विरुद्ध फंडों के दुरुपयोग अथवा गबन एवं कुप्रबंध के आरोप हैं, अथवा ऐसे शिकायतों की छानबीन हेतु समितियों की नियुक्ति कर सकती हैं, पर आरोप सिद्ध हो जाने पर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकती है। पृष्ठ संख्या 205, सरकारों द्वारा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की विभिन्न विधियां निम्न प्रकार हैं। सहायता अनुदान की पात्रता हेतु पूर्व अपेक्षाएं एवं स्वयंसेवी अभिकरणों की मान्यता हेतु मानदंड निर्धारित करना, फिक्सिंग क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग वॉलेंटरी एजेंसीज एंड प्री रिक्वायरिस्ट्स फॉर दियर एंटाइटलमेंट ऑफ ग्रांट्स इन एड। राष्ट्रीय विकास परिषद, जो देश में सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है, के द्वारा स्वीकृत 7वीं योजना प्रलेख में स्वयंसेवी संगठनों को मान्यता देने हेतु कुछ एक मापदंड सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं संगठन का विधिक अस्तित्व होना चाहिए, इसके व्यापक उद्देश्य समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं विशेषतया कमजोर वर्गों की पूर्ति करना होता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, सभी नागरिकों को धर्म, जाति, रंग, धर्म मत, लिंग, वंश के भेदभाव के बिना इसकी गतिविधियां सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। प्रोग्रामों को क्रियान्वित करने हेतु इसके पास आवश्यक नमनीयता, व्यावसायिक योग्यता एवं प्रबंधात्मक कौशल होना चाहिए। इसके पदाधिकारियों को किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्य नहीं होना चाहिए। इन्हें अहिंसात्मक एवं संवैधानिक साधनों का पालन करना चाहिए। इसकी धर्मनिरपेक्षता एवं कार्य की प्रजातंत्रीय विधियों एवं विचारणाओं के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसी प्रकार योजना आयोग ने सहायता अनुदान हेतु पात्रता के लिए स्वयंसेवी संगठनों के लिए समान शर्तें रखी हैं। जांच आयोग एवं समितियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशंस एंड कमिटीज। यह एक प्रहलिका है कि विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास गतिविधियों के वर्धन में स्वयंसेवी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति सरकार की आस्था के विपरीत इसे स्वयंसेवी अभिकरणों, जिनमें इसके द्वारा प्रायोजित एवं समर्थित अभिकरण सहित भी सम्मिलित हैं, के कार्यों के बारे में जांच आयोग नियुक्त करने की सीमा तक जाना चाहिए, जो उनके मनोबल को गिराने में योगदान देता है। भारत सरकार समाज के कार्यों की जांच करने हेतु एक जांच आयोग नियुक्त किया जाता है, परंतु इसमें से कुछ भी हल नहीं निकलता, केवल इसके कि समाज के विरोधी राजनीतिक नेताओं के अहम की संतुष्टि एवं संगठन की गतिविधियों की समाप्ति, इसके द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों को इसकी सेवाओं से वंचित होना पड़ा। इसी प्रकार 17 फरवरी 1982 को गांधी शांति संस्थान, गांधी स्मारक निधि, ग्रामीण विकास स्वयंसेवी संगठन समिति एवं अखिल भारतीय सर्व संघ के कार्यों एवं गतिविधियों, प्रकाशनों, निधियों के स्रोतों एवं दुरुपयोग की जांच हेतु श्री पीडी कुडाल को नियुक्त किया गया। इसने 7 रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंतिम रिपोर्ट जनवरी 1987 में प्रस्तुत की, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर अगस्त 1989 को रखी गई। इसने 16 मामलों में कार्रवाई किए जाने की रिपोर्ट दी, परंतु सरकार ने विधि मंत्रालय एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो के परामर्श पर 58 मामलों को सीधे छोड़ दिया। संपूर्ण रिपोर्ट को पूर्ण जालसाजी एवं सुविचरित गढ़े गए झूठों पर आधारित कल्पना की उड़ान, जिसका प्रोपेगंडा मूल्य के अतिरिक्त कोई मूल्य नहीं था, कहा गया। श्री एल.सी. जैन रमन मागा से पुरस्कार के विजेता ने कहा, कुदाल रिपोर्ट पत्थर न होकर कीचड़ था। गांधी शांति संस्थान के श्री के.एस. राधाकृष्ण का कथन था कि स्वयंसेवी संगठनों की क्रिया प्रणाली के विषय में बड़ी गलतफहमियां हैं तथा कुदाल आयोग शंका को उत्पन्न करने में सफल रहा है। श्री कुदाल उन व्यक्तियों जिनके बारे में उसे निर्णय दिया गया कि तुलना में तुच्छ व्यक्ति था। अनेक व्यक्तियों ने कुदाल आयोग की नियुक्ति को ध्येय में पक्षपाती, कार्यविधियों में टालू एवं उपागम में उभयवादी बतलाया। पृष्ठ संख्या 206। हाल ही में श्री ज्ञान प्रकाश भूतपूर्व महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की अध्यक्षता में भारतीय बाल कल्याण परिषद, जो समेकित बाल कल्याण सेवा के शिशु गृहों एवं अन्य कल्याण सेवाओं के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में प्रशंसनीय कार्य कर रही है, की गतिविधियों में जांच हेतु जांच समिति की नियुक्ति की गई। जांच रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि यह सब कुछ मंत्रालय में किसी सरकारी अधिकारी को वैयक्तिक वैर भाव के आधार पर हुआ है एवं समिति ने संदर्भित विषयों से बाहर जाकर स्वविरोधी कथन दिए, जिससे स्वयंसेवी अभिकरणों एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान का अभाव प्रकट होता है। उपर्युक्त उदाहरणों से अस्पष्ट कल्याण की राजनीतिकरण में स्वयंसेवी संगठनों में निराशा एवं अपमान को जन्म देकर उन्हें काफी आघात पहुंचाया है, परंतु पारस्परिक विचार विमर्श एवं सरकार को अपनी शिकायतों को समाधान हेतु पहुंचाने के लिए किसी सामान्य यंत्र की अनुपस्थिति ने उन्हें जो कुछ सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों को नियंत्रित करके तथा अपने माध्यमों द्वारा धन अनुदायित एवं उनके विदेशी फंडों को नियंत्रित करके एवं यदि आवश्यक हो तो बंद करके उन्हें स्व उद्देश्य हेतु निर्देशित करके किया जा रहा है, उस सबका मूक दर्शन बनने पर विवश कर दिया गया है। गैर सरकारी संगठनों के मध्य एकता एवं सशक्तता की तुरंत आवश्यकता है। इन संगठनों में अकेले रहकर अपना छोटा सा साम्राज्य स्थापित करने, कभी कभी अपने लक्षित समूहों के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं भूखंडों की वास्तविक रूप से सीमांकन करके कार्य करने की प्रवृत्ति पाई गई है। एकता के अभाव का कारण दुर्भाग्यवश व्यक्तित्व की समस्याएं एवं अविश्वास, अल्प संसाधनों के लिए प्रतियोगिता, दानित निधियों की सुगम प्राप्ति, कुछ एक दानकर्ता संगठनों की विभाजक नीति, उपागम कार्यक्रमों एवं रणनीतियों में अंतर तथा कभी कभी विचारीय मतभेद का परिणाम है। अंतिम आंतरिक लड़ाई झगड़े, प्रतियोगिता, एक दूसरे के प्रयासों की जड़ें खोदना एवं गैर सरकारी संगठनों की वर्तमान अस्त व्यस्तता कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि गैर सरकारी संगठन आंदोलन की कमजोरी संसाधनों का अभाव नहीं है, जिनका कि इस क्षेत्र में। अतएव आत्मविश्लेषण, सामान्य विचारधारा एवं सामान्य कार्य इस आंदोलन की कुंजी हैं। पृष्ठ संख्या 207। यदि गैर सरकारी संगठन अपनी गतिविधियों के लिए सरकारी अनुदान सहायता पर आश्रित होते हैं तो उनके ऊपर सरकारी नियंत्रण अपरिहार्य है। तर्क दिया जाता है कि इन संगठनों को सरकारी निधियों का प्रयोग करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विशाल राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय संसाधनों का इस प्रयोग किए जाने बिना संभव नहीं है। दूसरे, सरकारी धन जनता का धन है एवं गैर सरकारी संगठनों को इसे जनाभिमुखी एवं लोगों के विकास प्रोग्रामों हेतु प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए। सैद्धांतिक दृष्टि यह तर्क से उपर्युक्त प्रतीत होते हैं, परंतु जैसा है इन साधनों का वास्तविक प्रयोग करते समय गैर सरकारी संगठनों को समस्याओं जो पहले वर्णित की गई हैं का सामना करना पड़ता है। तथापि इस संगठनों को सरकारी निधियों को स्वीकार करते समय पर्याप्त सावधान होना पड़ता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दायित्व धन संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों के अनुरूप परियोजनाओं के लिए था, बाधक लेखा प्रक्रिया के बावजूद अधिकतम नमनीयता उपलब्ध थी तथा सरकारी सहायता प्राप्त परियोजना सरकार को विश्वास दिलाने का साधन थी कि गैर सरकारी संस्थाएं एवं उनकी क्रिया प्रणाली समर्थन योग्य है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी अभिकरणों की नवीनता का भी सरकारी सहायता अनुदान योजना के कारण ह्रास हुआ है, क्योंकि सरकार उन्हें संरचनात्मक योजनाएं क्रियान्वयन हेतु सुपुर्द कर देती हैं। सरकारी अभिकरणों का सरकार के साथ स्कीमों की अवधारणा एवं उन्हें क्रियान्वित करने की विधियों एवं तकनीकों के बारे में मतभेद हो सकता है। उदाहरणतया निर्धनता का उन्मूलन कैसे किया जाए, इस विषय पर सरकारी एवं स्वयंसेवी अभिकरण के दृष्टिकोण में भेद हो सकता है। स्वयंसेवी अभिकरणों का विचार है कि पूरक ऋण देने वाले सरकारी प्रोग्राम निर्धनता की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उनका विश्वास है कि वास्तविक समाधान प्राकृतिक संसाधनों के समान एवं न्यायपूर्ण विभाजन के साथ निकट रूप से अधिक संबंधित हैं। इसका अभिप्राय है कि कृषिकर भूमि, वनों, चरागाहों, खनिज पदार्थों के वर्तमान प्रयोग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने होंगे, ताकि प्राप्त लाभों को ग्रामीण जनसंख्या के मध्य समान रूप से वितरित किया जा सके। यदि स्वयंसेवी अभिकरण निर्धनता के बारे में अपने परिदृश्य को छोड़कर ऐसी अवधारणा जिनमें इनकी आस्था नहीं है को क्रियान्वित करने में अपने शक्ति का प्रयोग करता है, तो संभव है कि अभिकरण की स्वायत्त और स्थिति इन प्रोग्रामों के सीमित उपागम के साथ मिल जाए। पुनः यह सर्वविदित है कि जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर सरकारी अधिकारी स्वार्थी हितों, बड़े भूपतियों, ठेकेदारों आदि के साथ मिले होते हैं, जो निर्धन व्यक्तियों को उचित मजदूरी एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से इनकार करते हैं। इस प्रकार स्वयंसेवी अभिकरण की एक ओर निर्धन लोगों के शोषणकर्ताओं के साथ मिलीभगत करने वाले सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क करना होता है, तथा दूसरी ओर इससे लोगों में ऐसी छवि बनाने की प्रत्याशा की जाती है जिससे विकास कार्यक्रमों की क्रियान्वित में उनकी सहभागिता में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त सरकार की कुछ विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप लोगों को बड़ी संख्या में विस्थापित होना पड़ सकता है, जो उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था के बिना निर्धनों के लिए भयानक परिणामों को जन्म दे सकता है। पृष्ठ संख्या 208। जैसा कि दक्षिण में विभिन्न बांध परियोजनाओं में हुआ है, यदि स्वयंसेवी अभिकरण को निर्धन के हितों की चिंता है तो यह सरकार के विरुद्ध संघर्ष में उलझ सकती है, जिसे सरकारी अधिकारी अस्पष्ट या अनुमोदित नहीं करेंगे। पुनः स्वयंसेवी अभिकरण से कम लागत वाले स्थानीय संसाधनों पर आधारित तकनीकों में योगदान देने की अपेक्षा की जाती है, जो निर्धन कृषकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। परंतु स्थानीय अधिकारी हरित क्रांति प्रकार की प्राविधिकी में, जो कृषि रसायनों की उच्च मात्राओं तथा तदनुरूप बीजों पर आधारित हैं के प्रसार करने में संलग्न हैं, स्वयंसेवी अभिकरण रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए लोगों को कहते हैं, जबकि सरकार ऐसे बीजों का प्रचार करती है जो ऐसे रसायनों के प्रयोग की मांग करते हैं। इस प्रकार सरकार तथा स्वयंसेवी संगठन के मध्य संघर्ष क्षेत्रों में वृद्धि होती जाती है। स्वयंसेवी अभिकरणों को संलग्न करने की रणनीति सरकार एवं अभिकरणों के मध्य स्वस्थ वातावरण एवं सद्भाव की उपस्थिति की पूर्व कल्पना करती है, परंतु दुर्भाग्यवश वर्तमान संबंध सुखद नहीं है। प्रत्येक में दूसरे के प्रति शंका एवं आस्था का अभाव है। यद्यपि दोनों के मध्य विशेषतया उच्च स्तरों पर अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों के मध्य अच्छे संबंधों के एवं किए जाने वाले अच्छे कार्यों के कुछ एक उदाहरण देखे जा सकते हैं, तथापि प्रशासन के निचले स्तरों पर विशेषतया गैर संस्थात्मक एवं छोटे समूहों के प्रति ग्रामीण स्तर पर खुला विरोध है, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है। विकास प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों के मध्य सहयोग सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र एवं अस्पष्ट विचार विमर्श द्वारा कुछ एक महत्वपूर्ण विषयों के समाधान किए जाने की आवश्यकता है। वस्तुतः इन समस्याओं का जन्म सरकार एवं स्वयंसेवी अभिकरणों के मध्य संबंध, विकास कार्य में इन अभिकरणों की भूमिका तथा सामुदायिक विकास एवं जन सहयोग पर किसी अस्पष्ट नीति की अनुपस्थिति के कारण हुआ है। अतः सरकार को संघर्ष क्षेत्रों को यदि समाप्त नहीं हो सकते तो कम करने एवं दोनों के मध्य सरल संबंधों को बनाए रखने के लिए सुस्पष्ट नीति की घोषणा करनी होगी। दोनों सरकार एवं स्वयंसेवी अभिकरणों को अपनी उचित भूमिकाओं को अस्पष्ट समझना होगा। संगठनों को यह मानना होगा कि उनका कार्य राज्य का पूरक है, वे दूसरा राज्य नहीं हैं। अधिक से अधिक वे सरकार के प्रयासों के पूरक हो सकते हैं। वे राज्य द्वारा आरंभिक सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रयासों का स्थान नहीं ले सकते। यह उनका सरकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसी प्रकार सरकार को भी स्वयंसेवी अभिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करनी चाहिए तथा स्वैच्छिक कार्य की प्रकृति एवं इसके दर्शन को समझना चाहिए। दूसरा, यह सत्य है कि सरकारी सहायता अनुदानों पर स्वयंसेवी अभिकरणों की आत्मनिर्भरता, उनके कार्य एवं विचारधारा की स्वतंत्रता, जो स्वैच्छिक कार्य का मूल तत्व है, को कठिन बना देती है। परंतु सरकार को इस सीमा तक उनके ऊपर नियंत्रण नहीं करना चाहिए कि राजनीतिक वैर भाव अथवा अधिकारियों के अहम से प्रेरित जांच आयोग स्थापित करके उन्हें अपमानित किया जाए। स्वयंसेवी अभिकरणों का उचित मार्गदर्शन करके तथा उन्हें निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन में सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार एवं स्वयंसेवी संगठन के मध्य संबंध सामाजिक कल्याण एवं विकास में क्रमशः भूमिका अदा करने के लिए सामान्य प्रयास में सहभागिता का संबंध है। यदि इस सहभागिता को ठीक प्रकार से कार्य करना है तो सरकार एवं स्वयंसेवी संगठन दोनों को परस्पर सम्मान करना चाहिए, जैसा कि पूर्ण वर्णित किया गया है। ब्रिटेन में सरकार किसी कार्य को आरंभ करने के पूर्व विभिन्न प्रकार के स्वयंसेवी संगठनों, व्यावसायिक संगठनों एवं सेवा संगठनों से परामर्श करके प्रोग्रामों का निर्माण करती है। परिणामतः जब निर्णय की घोषणा संसद में की जाती है तो इससे संबंधित हितों एवं संगठनों की निहित सहमति प्राप्त होती है, क्योंकि स्वयंसेवी संगठनों को नियोजन स्तर पर ही संलग्न कर लिया जाता है। अतएव उनके क्रियान्वयन में वे सहर्ष सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अक्टूबर 1982 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर स्वयंसेवी अभिकरणों के परामर्शी समूहों की स्थापना पर बल दिया था, परंतु दुर्भाग्यवश केवल कुछ एक परामर्शी समूह ही स्थापित किए गए हैं। इस सुझाव का पूर्ण रूपेण परिपालन किया जाना अति आवश्यक है। संक्षेप में, सहभागिता सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों के मध्य संबंधों का मूल है एवं दोनों सहभागियों के हित में इसका पालन किया जाना चाहिए। सरकार क्योंकि वरिष्ठ सहभागी है, अतएव इसे स्वयंसेवी संगठनों की तुलना में अधिक उदार एवं सहायक होना चाहिए। निष्कर्ष कंक्लूजन पृष्ठ संख्या 209। स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका, रोल ऑफ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। समाज कल्याण में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका का दो मौलिक आधारों पर मूल्यांकन किया जा सकता है। सर्वप्रथम, राष्ट्रीय सरकार द्वारा आरंभित राष्ट्रीय योजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन में लोगों की सहभागिता संबंधी पक्ष है। प्रायोजकों ने प्रजातंत्री योजना के बाद लोगों की स्वैच्छिक सहमति प्राप्त करने के लिए ही नहीं अपितु नियोजन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया में उनकी सकारात्मक सहभागिता प्राप्त करने के लिए भी बहुधा अपनी उत्कृष्ट इच्छा अभिव्यक्त की है। दूसरे शब्दों में, सरकारी तौर पर निर्मित एवं प्रशासित योजना में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोग प्राप्त लोगों अथवा उनके संगठनों को संबद्ध करने का ही प्रश्न नहीं है, अपितु विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में संयुक्त सहभागिता विकसित करना है। वस्तुतः यह सहभागिता प्रजातंत्र की अवधारणा को वास्तविकता में रूपांतरित करने की ओर एक पत्र है। इस सामान्य उपागम के अतिरिक्त, जो प्रजातंत्री योजना के अंतर्गत किसी विकासीय परियोजना के बारे में उचित है, समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने का एक अन्य औचित्य है। भारत में सामाजिक कार्य के लंबे इतिहास में स्वयंसेवी संगठनों ने सदा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे किसी विवादग्रस्त व्यक्ति अथवा अकाल अथवा बाढ़ से उत्पन्न संकट का मामला हो। स्वयंसेवी संगठन सेवा प्रदान करने में हमेशा आगे आता रहा है। राज्य की भूमिका तत्कालीन शासकों के दृष्टिकोण के अनुसार उदासीनता से लेकर आकस्मिक, कभी कभी परोपकारी रुचि तक बदलती रही है। शताब्दियों तक राज्य सहायता की अपेक्षा सामुदायिक सहायता ही स्वयंसेवी संगठनों का प्रमुख आधार रही है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ही राज्य के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। संविधान में प्रगतिशील सामाजिक नीति का निरूपण किया गया तथा देश की योजनाओं में कल्याणकारी प्रोग्रामों को उचित स्थान दिया गया है। पृष्ठ संख्या 210। स्वैच्छिक कार्य के गुण, मेरिट्स ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस। स्वयंसेवी संगठनों की भूतकालीन सेवाओं को मान्यता देते हुए सरकार ने पुनः कल्याणकारी प्रोग्रामों के विकास में मुख्य दायित्व में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भाग लेने हेतु उनके पक्ष का समर्थन किया है। सरकार की इस नीति के अन्य कारण भी हैं। विश्वास किया जाता है कि राज्य का प्रशासकीय संयंत्र कल्याणकारी राज्य का भी प्रकृतिवश अपने स्वभाव में वैयक्तिक होता है। जो स्वयंसेवी संगठन विशेषतया क्षेत्रीय स्तर पर प्रदान कर सकता है। समाज कल्याण कार्य में वैयक्तिक उपागम अधिक आवश्यक हैं। दूसरा अति महत्वपूर्ण तत्व है, कल्याणकारी प्रोग्रामें हेतु सभी संभावित संसाधनों को एकत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य के अधिकांश संसाधन आर्थिक प्रोग्रामों पर व्यय हो जाते हैं। अतएव समाज कल्याण हेतु राज्य पर्याप्त संसाधन प्रदान करने की स्थिति में नहीं होता। इस कारण समाज को स्वयं इस ओर संसाधनों का प्रावधान करना होता है। तदर्थ प्रकार यही है कि स्वयंसेवी संगठनों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवा के आधार पर सामुदायिक सहायता प्रदान करने की अनुमति दी जाए। संसाधनों को इकट्ठा करने में स्वयंसेवी संगठन सरकार की तुलना में अधिक लाभ की स्थिति में होते हैं, क्योंकि उपरोक्त साधारण नागरिक के लिए एक दूरस्थ अवैयक्तिक निकाय है। इसके अतिरिक्त क्योंकि लोगों की सेवा का प्रत्यक्ष एवं तुरंत लाभ होता है, अतः वे सहायता देने के लिए अधिक तत्पर होते हैं। स्वयंसेवी संगठनों के सरकारी अभिकरण की तुलना में अन्य लाभ हैं, कार्यविधियों एवं प्रक्रियाओं में पर्याप्त नमनीयता, प्रयोगीकरण में स्वतंत्रता एवं तुरंत कार्यवाही करने की क्षमता, सरकारी संगठनों को सशक्त बनाना, स्ट्रेंथनिंग वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, जबकि सरकार कल्याणकारी प्रोग्रामों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों को अधिक क्रियाशील भूमिका प्रदान करने के पक्ष में है। आवश्यक है कि स्वयंसेवी संगठन भी उनके प्रति आस्था को युक्त प्रमाणित करने के लिए स्वयं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करें। सर्वप्रथम एक ही भू क्षेत्रों तथा कार्य के समान अथवा मिलते जुलते क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों की बहुलता ने भारत में कल्याण सेवाओं के विकास को आघात पहुंचाया है। इससे संसाधनों का केवल अपव्यय एवं कार्य दोहराव ही होता है। इसका परिणाम यह भी होता है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ सेवाओं का केंद्रीकरण हो जाता है, जबकि अन्य क्षेत्र अछूते रह जाते हैं। दूसरे, स्वयंसेवी संगठनों के मध्य उचित समन्वय एवं तालमेल के अभाव में वे ना तो अपने विचारों को सशक्त ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और ना अपने दृष्टिकोणों का एकता एवं शक्ति सेवाओं की गुणवत्ता को भी बाहर से बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक पदाधिकारियों एवं अभिकरणों की कार्यवाही स्टाफ के सापेक्ष दायित्व क्षेत्र को अस्पष्ट परिभाषित किए जाने की भी समस्या है। कार्यकारी अधिकारियों को उनके तकनीकी योग्यता के कार्य क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता दिए जाने की आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 211, फंड एकत्रीकरण, फंड रेजिंग। परिवर्तित सामाजिक आर्थिक दशाओं के कारण स्वयंसेवी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा करना कठिन हो गया है। रेणुका राय समिति 1959 ने विकास एवं भरण पोषण अनुदानों सहित सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश की थी। इसके बावजूद भी स्वयंसेवी संगठनों को स्वयं को चालू रखने हेतु बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करना होगा। सहायता अनुदान प्रणाली स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों का केवल पूरक हो सकती है। यह भी आवश्यक है कि अपने स्वयंसेवी स्वरूप के संरक्षण हेतु उन्हें राज्य सरकार पर अत्यधिक आश्रित नहीं होना चाहिए। सामुदायिक सहायता की मात्रा संगठन द्वारा प्रदत्त सेवा की सफलता की ओर इंगित करेगी। अमेरिका एवं कनाडा में सामुदायिक कोष पेटियां संगठित करने का विचार तथा कुछ वर्षों से प्रचलित है। इस विचार का प्रमुख तत्व है कि कोष को नागरिकों की अधिक संख्या से अल्पदान न की दानवीरों की अल्पसंख्या के विशाल दान द्वारा इकट्ठा किए जाएं। इस लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए समिति ने कहा, स्वयंसेवी संगठनों को फंड एकत्रीकरण करने के अपने प्रोग्रामों को पुनर्रूप देना होगा, ताकि वे कुछ एक दानवीरों की सहानुभूति की अपेक्षा नागरिकों के विशाल बहुमत को स्वैच्छिक सहायता पर निर्भर हों। भारत में स्वयंसेवी संगठनों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों यथा ऑक्सफैम, केयर, CAA, डेनिडा, CCF, CIDA आदि से भी राहत कार्य एवं विभिन्न सहायता समाज कल्याण एवं विकास प्रोग्रामों के लिए व्यापक विदेशी सहायता प्राप्त होती है। ऐसी सहायता यद्यपि भिक्षा रूप में होती है, परंतु विकास कार्यों के लिए उनकी उपलब्धता को शंका से देखा जाता है। हर कानून, पंजीकरण कानून एवं विदेशी सहायता नियमन कानून द्वारा विदेशी सहायता के प्रवाह के ऊपर नियामक नियंत्रण कठोर करना होता है। सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। सरकार एवं स्वयंसेवी संगठन दोनों जरूरतमंद लोगों को समाज कल्याण सेवाएं प्रदान करने एवं सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयास में संलग्न होने के कारण उनमें परस्पर सुखद संबंध होने चाहिए, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। सरकार का स्वयंसेवी अभिकरणों के ऊपर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना युक्तियुक्त है, न कि केवल यह सुनिश्चित करने की कि उन्हें प्रदत्त सहायता अनुदानों का स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही प्रयोग किया गया है, अपितु यह जानने के लिए भी कि वे जनहित विरोधी उद्देश्यों के लिए एवं कुढ़ंग से तो कार्य नहीं करते, परंतु सरकार ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग वैयक्तिक अथवा राजनीतिक वैरभाव के आधार पर सुविख्यात एवं दीर्घकाल से कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के विरुद्ध जांच आयोग स्थापित करके उन्हें अपमानित करने की सीमा तक किया है। पृष्ठ संख्या 212। सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों के मध्य संबंध भागीदारी का है, अतएव दोनों भागीदारियों को इसी संबंध के अनुसार कार्य करना चाहिए। स्वतंत्र एवं अस्पष्ट विचार विमर्श द्वारा आदान प्रदान की भावना से एक दूसरे के दृष्टिकोण को समंजित करते हुए संघर्ष क्षेत्रों का समाधान करना चाहिए, ताकि सामान्य रूप से समाज तथा विशेष रूप से आलाभान्वित व्यक्तियों के हितों की सर्वोत्तम सेवा हो सके। सरकार को वरिष्ठ सहभागी के कारण अधिक उदार होना चाहिए एवं स्वयंसेवी संगठनों को राष्ट्रीय हित में उनके कार्य को अधिक उत्तम एवं लाभदायक बनाने हेतु सरकार द्वारा जारी निर्देशों, आचार संहिता एवं दिशा निर्देशों का ईमानदारी से अनुसरण करना चाहिए।